आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर में विश्व के सबसे ऊंचे चिनाब ब्रिज का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री ने उज्जैन में कई विकास कार्यों की दी सौगात। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रतलाम जिले में नवोदय विद्यालय का किया लोकार्पण और केंद्र सरकार के 11 वर्षों में संस्कृति विरासत संरक्षण पर दिया जोर। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कई प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन जम्मू कश्मीर की विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कटरा में विश्व के सबसे ऊंचे आर्क पुल चिनाब ब्रिज और अंजी पुल का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये अत्याधुनिक ब्रिज जम्मू और श्रीनगर के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा। प्रधानमंत्री ने 46,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। श्री मोदी ने जम्मू कश्मीर के भीतर कनेक्टिविटी बढ़ाने वाली वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई और जम्मू में मेडिकल कॉलेज की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश अब रेलवे नेटवर्क से जुड़ गया है।
आज वादी कश्मीर भारत के रेल नेटवर्क से जुड़ गई है। कश्मीर से कन्याकुमारी ये अब रेलवे नेटवर्क के लिए भी हकीकत बन गया है। उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला, ये रेल लाइन प्रोजेक्ट ये सिर्फ नाम नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के नए सामर्थ्य की पहचान है। भारत के नए सामर्थ्य का जयघोष है।
श्री मोदी ने कहा कि भारत आतंकवाद के आगे नहीं झुकेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुर्भाग्य से हमारा पड़ोसी देश मानवता और गरीबों की आजीविका के खिलाफ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब भी पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनेगा उसे अपनी शर्मनाक हार याद आएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारतीय भाषा अनुभाग का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि यह अनुभाग प्रशासन को विदेशी भाषाओं के प्रभाव से मुक्त कराने में ऐतिहासिक सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि मातृभाषा में सोचने, विश्लेषण करने और निर्णय लेने की प्रक्रिया से ही क्षमता का पूरा इस्तेमाल संभव है। उन्होंने कहा कि सभी स्थानीय भाषाओं को सुदृढ़ बनाकर ही भारत गौरवशाली स्थिति प्राप्त कर सकता है। गृह मंत्री ने कहा कि भारतीय भाषा अनुभाग देश की भाषाई विविधता को समाहित करते हुए सभी भाषाओं के लिए एक दृढ़ और संगठित मंच प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज उज्जैन में विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। साथ ही उज्जैन स्थित लोकमान्य तिलक शिक्षण समिति द्वारा आयोजित शिक्षक प्रशिक्षण शिविर के समापन समारोह में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री जल गंगा संवर्धन अभियान में श्री चिंतामण गणेश मंदिर परिसर स्थित लक्ष्मण बावड़ी से बावड़ी उत्सव में शामिल हुए। श्री यादव ने बूंद सहेजे बावड़ी पुस्तक का विमोचन किया। उन्होंने एक पेड़ माँ के नाम अभियान में चिंतामण गणेश मंदिर परिसर में सिंदूर के पौधे का रोपण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उज्जैन में आयोजित की गई वेलनेस समिट में 1,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। उज्जैन देश विदेश के लिए मानसिक शांति, अध्यात्म, वेलनेस केयर का महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड को नीट पीजी 2025 की परीक्षा 3 अगस्त को एक पाली में आयोजित करने की अनुमति दे दी है। इससे पहले यह परीक्षा 15 जून को निर्धारित थी, लेकिन बोर्ड ने परीक्षा आयोजित करने के लिए 2 महीने से अधिक समय की मांग की थी। बोर्ड ने 3 जून को समय बढ़ाने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया था, जिसमें कहा गया कि उसे परीक्षा केंद्रों में संख्या दोगुनी और सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम करने की जरूरत है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति एमपीसी ने आज पिछली 6% वाली रेपो दर को 50 आधार अंकों में लगातार तीसरी बार कटौती करके 5.5% करने का निर्णय लिया है। इस कटौती के बाद आशा की जा रही है कि इससे जुड़ी सभी बाहरी बेंचमार्क उधार दरों ईबीएलआर में भी इसी तरह की गिरावट आएगी। बैंक अपने ऋण देने की दरों में भी कटौती कर सकते हैं।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रतलाम जिले के आलोट में आज पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय 2 आलोट और छात्रावास और स्टाफ क्वार्टरों का लोकार्पण केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, कर्नाटक राज्यपाल डॉ. थावरचंद गहलोत सहित कई जनप्रतिनिधि कार्यक्रमों में उपस्थित रहे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री प्रधान ने कहा कि यदि हमारे बच्चों को अच्छा अवसर मिले तो हमारे देश का हर बच्चा उत्कृष्ट परिणाम लाने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि 2020 की शिक्षा नीति के तहत नवोदय विद्यालय काम कर रहे हैं।
2020 की शिक्षा नीति में जो जो विषय कहा गया, मेधावी विद्यार्थी बनाने के लिए नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय काम कर रहे हैं। राज्य भी पीछे नहीं है, मध्य प्रदेश भी आगे है। और आज हमने आलोट में संदीपनी विद्यालय का भी शुभारंभ किया। आलोट वालों के लिए दो दो आनंद की बात है, एक नवोदय विद्यालय की श्री वृद्धि और आलोट में संदीपनी विद्यालय की लोकार्पण।
जनजातीय कार्य विभाग के राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने आज हरदा में नगर पालिका परिषद द्वारा आयोजित पर्यावरण दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री ने अजनाल नदी के तट पर पौधारोपण किया। इस अवसर पर पूर्व कृषि मंत्री कमल पटेल, नगर पालिका अध्यक्ष भारती कमेडिया सहित अन्य अधिकारी कर्मचारियों और 5 स्व सहायता समूह की महिलाओं ने भी आम, आंवला, नीम, बादाम, जामुन के पौधे लगाए। भारत ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के सिद्धांतों से प्रेरित होकर एक दशक में उल्लेखनीय परिवर्तन किया है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए पिछले 11 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर एक विशेष फीचर लेकर आया है। आज हम सांस्कृतिक विरासत संरक्षण पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। ये भारत के सभ्यतागत गौरव को पुनर्जीवित करने की कुंजी है। पेश है एक रिपोर्ट।
पिछले एक दशक में भारत का सांस्कृतिक पुनरुत्थान एक जीवंत चित्रपट की तरह सामने आया है, जो विरासत में समृद्ध है, अभिव्यक्ति में विविधतापूर्ण है और अपनी वैश्विक पहुंच से आश्वस्त है। केंद्र सरकार ने भारत के सच्चे राष्ट्र निर्माताओं को सम्मानित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसमें यह सुनिश्चित किया गया है कि विरासत को राजनीतिक सीमाओं से परे संरक्षित किया जाए। स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने पर आजादी का प्रतीक, आजादी का अमृत महोत्सव जैसे अभियान ने देश भर में आयोजित सांस्कृतिक और देशभक्ति कार्यक्रमों के माध्यम से राष्ट्र के बलिदान और उपलब्धियों का जश्न मनाया है। प्रधानमंत्री संग्रहालय, राष्ट्रीय पुलिस स्मारक, आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय, भारत मंडपम और नए संसद भवन सहित लंबे समय से लंबित स्मारक अब राष्ट्रीय एकता के गौरवशाली प्रतीकों में बदल गए हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत काशी तमिल संगमम और महाकुंभ 2025 जैसे आयोजनों में एक साथ विविधता में एकता का जश्न मनाया गया है। इस बीच बौद्ध शिखर सम्मेलन और सिख गुरुओं के प्रकाश पर्व जैसे वैश्विक आयोजनों ने भारत की आध्यात्मिक विरासत को मजबूत किया है। 23 करोड़ से अधिक लोगों की भागीदारी और 2024 में नए विश्व रिकॉर्ड स्थापित करने के साथ योग एक वैश्विक आंदोलन बन गया है, जिसने भारत को स्वास्थ्य के लिए वैश्विक आवाज के रूप में स्थापित किया है। आयुर्वेद भी भारत को समग्र स्वास्थ्य सेवा के केंद्र के रूप में स्थापित कर रहा है। भारत ने यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में अभी अपनी उपस्थिति का विस्तार किया है, जिसमें 43 विश्व धरोहर स्थल है। इसके अलावा विश्व ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट वेव्स जैसे कार्यक्रम वैश्विक मंच पर भारत की मीडिया और मनोरंजन प्रतिभा को दर्शित कर रहे हैं। त्योहारों और योग से लेकर संगीत और कला तक हमारी संस्कृति अब कई देशों में देखी और सम्मानित हो रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से मैं प्रशांत शर्मा।
विकसित भारत का अमृतकाल, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल सीहोर स्थित प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सलेंस में आयोजित कार्यक्रम में लगभग 100 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। इसके साथ ही विभिन्न योजनाओं के अनेक हितग्राहियों को योजनाओं के स्वीकृति पत्र प्रदान कर लाभान्वित भी करेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी शामिल होंगे। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुबह 7:10 पर। नमस्कार।